Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन मिला हुआ नहीं, और जब तक मिला हुआ प्रतीत हो रहा है तब तक ये जो नियम है जन्म और मरण ये समाप्त होने वाला नहीं। ये कब होगा? तो कहने लगे ये तब होगा जब ये मिले हुए का भ्रम है वो नष्ट हो जाए। तो क्या होगा? तो कहने लगे फिर जन्म मरण होगा ही नहीं, सत्ता एक है। जब दूसरी सत्ता ही नहीं है तब उसके अंदर इच्छा का उदय नहीं होगा, और इच्छा का उदय नहीं होगा तो बगैर कामना के जन्म होता ही नहीं, तो फिर मैं तू आदि भी नहीं होगा। ये संकेत किया। अब इस सिद्धांत पर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए प्रार्थना की गई, और प्रार्थना के अंत में तीन बार कहा। क्या कहा? ओम शांति शांति शांति। और जिसका अर्थ क्या किया गया? त्रिविध ताप की शांति हो। क्या कहा? त्रिविध ताप की शांति हो। तो त्रिविध ताप क्या बतलाए? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि। आध्यात्मिक तापों को कह दिया गया क्या? व्याधि रूप और आदि रूप। व्याधि होती है हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में, और आदि होती है सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर का रोग विकार और स्थूल शरीर के विकार को ही हम क्या मानते हैं? का ये विकार ही दुखद हैं, यही तो दुख के कारण। तो इसको कह दिया आध्यात्मिक दुख। और फिर उसके बाद जो है आदि भौतिक, जो हिंसक आदि जंतुओं से आदि होने वाले जो दुख हैं, है? तो उनको क्या कह दिया? कहा वो आदि भौतिक हो गए, पदार्थ विशेषों से होने वाले। और जो है वृष्टि अनावृष्टि आदि जो ये दुख है इनको क्या कह दिया? कहा दैविक दुख कह दिया। अब वेदांत की तो बात है ही, लेकिन सांख्य शास्त्र भी यहां पर थोड़ा स्वीकार करता। क्या कहता? दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टा सा पार्थ चेन नई कांति तो अत्यंता भावा। क्या मतलब? कहा दुख त्रयाभिघाता, संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र क्या है? तीन दुखों से अभिघातित है। तीन दुखों का उसके ऊपर अभिघात हो रहा, उन तीन दुखों में कोई न कोई दुख उसके पीछे पड़ा हुआ, ये समझ लो। तो तीन दुखों से ये संसार का जीव जो है क्या है? प्रताड़ित हो रहा है। किसी को शारीरिक दुख, यदि शारीर से स्वस्थ है तो मानसिक दुख, मन से स्वस्थ नहीं, और इनसे भी यदि स्वस्थ है तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ये सब दुख आ जाते। यह कहीं आतंकवादी है धमाका बोल देते, ये सारे दुख आ जाते। तो ये इस प्रकार के जो दुख हैं वो कहीं न कहीं इन दुखों से प्रताड़ित हो रहा। अब जो है जब दुखों से प्रताड़ित हो रहा है तो उसके अंतर्गत स्वाभाविक इच्छा होती है कि दुख मां भूत, मेरे को दुख न हो किंतु सुख की प्राप्ति हो। इसलिए शांति मंत्र में बार बार सन्नो सन्नो है, मेरे लिए जो है समन करो समन करो, देवताओं से प्रार्थना। ये किसी ने नहीं कहा कि दुख दो, दुख का समन करने के लिए सुख की प्रार्थना की। और जब सुख की प्रार्थना की और सुख के लिए कह रहे कि हमें सुख हो, तो अब ये सुख कब हो, कैसे होगा, ये समस्या आई। और जब तक ये सुख नहीं होगा, दुख की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक शांति नहीं। शांति का मतलब क्या? जहां पर किसी प्रकार का विकार न रह जाए। जब तक लहरें उठेंगी तब तक समुद्र को शांत कह सकते हो। जहां किसी प्रकार की लहर न उठे उसे क्या कहोगे? शांत। तो शांति तभी होगी हमारे में भी जब कोई इच्छा ही न हो, ठीक है। तो जब कामना से रहत हो जाएंगे तभी जाकर के क्या होती, का शांति होती। और कामना जब तक रहेगी तो नियम बतला दिया तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी। पुनः इच्छा होगी, इच्छा से हम कर्म करेंगे, कर्म से फल मिलेगा, फल का भोग होगा, भोग होने पर वो समाप्त हो जाएगा, पुनः उसकी इच्छा होगी और पुनः इच्छा होगी तो पुनः फल, और ये चक्कर चलता, ये नियम है। अब जो है तो कहने लगे इन दुखों से कैसे निवृत्ति हो, सुख की शांति की हमें प्राप्ति हो। तो वहां सांख्यकार ने भी संकेत किया कि ये तीन दुख जो है प्रत्येक प्राणी को प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ अंशों में मतभेद भी है, लेकिन यहां पर इतना स्वीकार करते हैं तो इन दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तो उन्होंने उपायों की चर्चा की। दुखत त्रया विघाता जिज्ञासा तत् अपघात के हेतु, तो जो तीन दुखों का अपघात हो रहा है उन तीन दुखों को भी अविघातित कर देना, उनका भी अपघात कर देना। अर्थात जो हमारे ऊपर घात कर रहे हैं हम उसी के ऊपर घात कर रहे हैं तो वो ही समाप्त हो जाएगा, तो हम कैसे हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो दुख हमारे ऊपर अभिघात कर रहे हैं ऐसे उन दुखों के ऊपर हम अपघात कर सकें। तो कहा ये कब होगा, अर्थात दुखों को समाप्त कर सकें, तो ये कब होगा, तो उसके लिए उपाय बतलाए। कहा दृष्टा सपार्थ, सपार्थ पार्थ शब्द नहीं अपार्थ शब्द है, दृष्टा सा पार्थ ऐसा शब्द, तो संधि तोड़ देंगे तो हो जाएगा दृष्ट स अपार्थ, अपार्थ माने निवारण करना, दूर करना। तो एक तो दृष्ट उपाय, कैसे उपाय हैं, दृष्ट उपाय, दृष्ट उपाय का मतलब जो दृष्टि का विषय है, अर्थात लौकिक उपाय, हम लौकिक उपायों के द्वारा दुख को दूर कर सकते हैं। संकेत किया भाई तापमान बढ़ गया, बुखार आ गया, तो बुखार की निवृत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दृष्ट उपाय एलोपैथिक हैं, होम्योपैथी हैं, तो इनको लेकर के हम क्या करेंगे, उस औषधि को ग्रहण करेंगे और उस औषधि के द्वारा हमारे उस ताप का समन हो जाए, तो क्या हो जाए, दृष्ट उपाय के द्वारा जो आध्यात्मिक दुख है शारीरिक आदि उसकी हम निवृत्ति कर लें। ये आ गया। आगे संकेत किया कि ठीक है भाई दृष्ट उपायों के द्वारा इनकी निवृत्ति हो जाएगी, कुछ दृष्ट उपाय हैं और कुछ ऐसे हैं कि उन्हीं की निवृत्ति होगी, सबकी दृष्ट उपायों से निवृत्ति नहीं। अब जैसे हिंसक जंतु हैं, शत्रु आदि हैं, उनसे दुख की निवृत्ति करने के लिए भी हम उपाय कर लेंगे, इस प्रकार के मकान बना लेंगे, ऐसी सुरक्षा कर लेंगे, अस्त्र शस्त्र रख लेंगे, है और ऐसी पुलिस जो है लगा देंगे, तो ये सब जो है क्या है, तो ये दृष्ट उपाय के अंतर्गत। अब कहने लगे जो अनावृष्टि वृष्टि आदि जो इस प्रकार से दैवी आदि हैं उनकी निवृत्ति किससे हो, ये तो दृष्ट उपाय हो, तो उसके लिए कह दे आनुश्रविक, वहां पर उन्होंने संकेत किया उनके लिए आनुश्रविक, आनुश्रविक का मतलब है माने उपासना, उसके मतलब क्या है उपासना। जो दृष्ट उपाय है वो तो कर्म के द्वारा पुरुषार्थ के द्वारा पराक्रम के द्वारा होने वाली, तो पराक्रम के द्वारा अपने पुरुषार्थ से हम अपने दृष्ट उपायों से हम उन दुखों की निवृत्ति कर लेंगे। लेकिन जो ऐसे दैवीय हैं वृष्टि अनावृष्टि आदि का उनका हम क्या करेंगे, उनसे निवृत्ति कैसे करेंगे, तो कहने लगे आनुश्रविका, और भी दैवी जो हैं तो उनके लिए आनुश्रविका माने उपासना, उनकी निवृत्ति किससे हो जाएगी, कहा उपासना के द्वारा, उन देवों की हम उपासना करेंगे और देवों की उपासना करेंगे तो देवा देव जो है हमारे ऊपर अनुकंपा करेंगे तो उनकी निवृत्ति हो जाए। इसलिए यज्ञ विशेषों के द्वारा यदि वृष्टि नहीं हो रही है तो वृष्टि करा लेना, और अधिक वृष्टि हो रही है तो वृष्टि को न्यून कर लेना, ऐसे ऐसे यज्ञों का भी विधान है। और आप तो सुनते ही हो महाराज जनक ने भी यज्ञ की, और कब की, अनावृष्टि को लेकर के, और जब यज्ञ किया यज्ञ पूरा हुआ तो वृष्टि हो गई, ये सब चर्चाएं आती। तो अब यहां पर जो है ये सब उपाय बतला दिए, लेकिन वहीं पर सांख्य शास्त्र कहने लगा कि आत्यंतिक निवृत्ति करने में यह उपाय भी असमर्थ है। वेदांत तो मानता है, लेकिन सांख्य ने भी यह स्वीकार किया। क्या कहा? कि आत्यंतिक निवृत्ति करने में यह उपाय भी असमर्थ है। निवृत्ति तो कर सकते हैं, लेकिन एक कालिक कर सकते हैं, एक अवधि तक कर सकते हैं, सर्वथा ये निवृत्ति कर सकते नहीं। अरे वही हमने टेबलेट आज ले लिया, आज बुखार चला गया, अब कोई नियम तो है नहीं कि कल नहीं आएगा, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, फिर आ सकता है। और इसी प्रकार से वृष्टि अनावृष्टि ये भी सब, तो कहने लगे कि आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। हमने यज्ञ आदि कर्म करके स्वर्ग आदि को भी प्राप्त कर लिया, सुख मिला, शांति हुई, लेकिन वो भी कैसी है? काल में बंधी हुई। आत्यंतिक निवृत्ति सर्वदा वह निवृत्ति नहीं, क्योंकि गीता तो कहता ही है छीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। लेकिन वहां सांख्य शास्त्र ने भी कहा छायत्वं च स्वर्गादे, ये स्वर्ग आदि भी क्या है? छहशील है, क्योंकि इनमें भी छहशील क्यों? नियम विद्यमान है। अज्ञान कृत माया कृत जो नियम की जिस चर्चा की, वो नियम वो व्यवस्था वहां पर विद्यमान, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग के पश्चात फिर जो है मृत्युलोकम विसंति, फिर मृत्युलोक में क्यों? वो बैलेंस आपने कर दिया, लेकिन बैलेंस कब तक रहेगा? आप बैलेंस का वो करते रहोगे तो किसी न किसी दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। है भाई कुबेर का ही खजाना क्यों नो, एक एक पैसा यदि रोज निकालते रहो तो धीरे धीरे न्यूनता को प्राप्त हो जाए, और न्यून हो गया तो आप सभी चाहते पूर्ति हो, तो कामना ज्यों की त्यों बनी रहेगी और जन्म मरण भी ज्यों का त्यों। तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति संभव नहीं। लेकिन यहां संकेत क्या करते हैं? तीन बार कहा शांति से, माने तीनों तापों की हमारी क्या हो जानी चाहिए? निवृत्ति। एक उदाहरण याद आ गया, ये सुख स्वर्ग सुख यज्ञ आदि उपासनाओं से होने वाला वो कितना है? तो अवंतिका का राजा बड़ा ही धार्मिक था, वो अवंतिका मानी ही ऐसी गई परंपरा ही उसकी थी, उसने इतने यज्ञ किए, उन यज्ञों के प्रभाव से वह जो है इंद्रलोक पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंचा, इंद्रलोक में पहुंचा और वहां के सुख को उसने प्राप्त किया, काफी समय तक वो वहां रहा। लेकिन जब काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन इंद्र ने उसे बुलाया और इंद्र ने बुला करके कहा कि भाई तुम्हारे पुण्य तो अभी है, बाकी बैलेंस तो आपका है, लेकिन समय बहुत व्यतीत हो गया है, ये बैलेंस तुमको तभी प्राप्त होगा और यहां तभी तक रह सकते हो। कब तक? कहा बैलेंस भी होना चाहिए और बैलेंस का कोई साक्षी होना चाहिए, बगैर साक्षी के तुम यहां रह सकते? जब ऐसा कहा तो उसने कहा वाह, हमारे लिए साक्षी कौन नहीं होगा, हमने जो है इतने यज्ञ किए कि उन्होंने यज्ञों के प्रभाव से चरवणवती नाम की नदी प्रवाहित हो गई, जिसे चंबल कहते आज, उसका पहले नाम था चरवणवती। कह यज्ञ प्रवाहित होगी तो मुझे कौन नहीं जानता? तो कहा ठीक है, फिर गवाही को लेके आओ। वो आए और जब आए पृथ्वी लोक में, देखा जहां जाए तो जहां पर जंगल था वहां नगर खड़ा हो गया, जहां नगर था वहां खंडहर खड़े हुए, और अब देखने लगे परिचित कोई मिले, कोई परिचित मिला ही नहीं, जिससे कहें उस वही कह दे कि मैं नहीं जानता। चारों तरफ घूमते घूमते ढूंढते रहे लेकिन कोई गवाही नहीं मिला, क्योंकि संसार का नियम है चलायमान गतिमान। अब जब कोई नहीं मिला तो बेचारे परेशान हुए, परेशान होकर के उसी नदी के किनारे जाकर के मस्तक पकड़ करके बैठ गए, और जब बैठ गए तो वहां चर्चा आती कि वहां से कछुआ रेंगता हुआ दिखाई दिया। उस कछुए ने संकेत किया कि भाई तुम दुखी क्यों हो? तो उन्होंने अपने दुख को अभिव्यक्त किया कि साक्षी चाहिए और कोई साक्षी हमें मिल रहा, हजारों वर्ष बीत गए। उसने कहा चिंता न करो, मैं साक्षी दूंगा। क्या कहा? मैं साक्षी। कहा आप साक्षी कैसे दोगे? कहा जब तू यज्ञ करता था तो मेरी पीठ जो है, और ये सर्वत्र चहचहाती है कि समुद्र में भी किसने आश्रय दिया, तो कहा उसी कच्छप ने। ठीक है, अवतार भी कच्छप हुआ। और मानस में जहां कल्पना तुलसीदास ने की तो वहां भी क्या कहा, परम रूप में कच्छप सोई, ये शब्द दिया। वहां तीन प्रकार के मंथनों की जहां चर्चा की उन्होंने, तो वहां पर जो है उन्होंने कहा कि सारे साधन तो अलग अलग बदल दिए गए, लेकिन जो है एक चीज नहीं बदली, सारे साधनों में परिवर्तन हुआ, प्रवाह हुआ, लेकिन एक चीज में परिवर्तन नहीं हुआ। कहा किसमें नहीं हुआ? तो कहले कछुआ बहीरा, चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे जो है सीता की छवि का मंथन हो, चाहे वो भरत रूपी समुद्र का मंथन हो, और चाहे जो आरण्यक कांड के अंतर्गत जिसको जो है ब्रह्म पयोज मंदर ज्ञाना करके जहां संकेत किया, वहां ब्रह्म का जो है मंथन किया हो, वहां पर भी उन्होंने संकेत किया कि परम रूप में कच्छप सोई, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तब जो है वहां पर ये जब संकेत आया, तो आगे कथा छोड़ो, इतना ही सार लेना है। तो अब जो है उसने कहा जब कछुए ने, तो इसका मतलब क्या, उस कच्छप से संकेत क्या किया, जो सारे विचारों की आधारशिला है। हमारा अंतःकरण विचार करने में, मंथन करने में कब समर्थ होता, यदि वो चेतना न हो। वही कछुआ है, वही आत्मा ही कछुआ है, उसके बगैर ये कोई भी क्रिया चल सकती नहीं। प्रकृति भी कोई भी क्रिया करती है तो प्रकृति में भी कार्य करने की सामर्थ्य नहीं, जड़। लेकिन कब करती है? तो कहने लगे करती उसी के आश्रय को लेकर, बगैर उसके आश्रय के अंधकार की सिद्धि भी प्रकाश के बगैर हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार से यहां संकेत किया, और वो कच्छप कौन है? तो कहा आत्मा ही है, वो कोई और दूसरा नहीं, वही आश्रय है। अब ऐसे उस आश्रय का जब हमें बोध होता है तो वो हमारा साक्षी बनता है। इसलिए कहा भी गया है कि सुसुप्ति के ज्ञान की स्मृति कराने वाला कौन है? सुसुप्ति में, क्योंकि वहां ये बुद्धि तो थी नहीं, मन भी नहीं था, इंद्रियां भी नहीं थी, फिर सुख से सोया ये किसने कहा? तो कहा तो बाणी ने, और इंद्रियों के और अंतःकरण के बल से कहा, लेकिन कहा ये तो प्रसुप्त पड़े थे, इनको तो ये ज्ञान हुआ ही नहीं, फिर जो है ये किसने कहा? तो क्या कहा? कहा इनका जो आश्रय, इनको जो चेतना देने वाला है, तो संकेत किया केन उपनिषद में कि मन जिसका मनन करने में असमर्थ है। लेकिन मन को मनत्व प्रदान करने वाला कौन है? एन मनसा न मनते एन आहोरम मनोमतम तदेव है, उसको ही क्या है विद्धि माने जानो, वो ज्ञान की तरफ संकेत। तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं कि इस प्रकार से जब जो है हम जब उस आत्मा को जो मूल है निष्का सबका, जिसके आश्रय में रह करके ये सब प्रवर्तमान होते हैं, और जिसके आश्रय के बगैर ये सब प्रवर्तमान नहीं हो पाते, तो वो जो है वो क्या है? वही है मूल। लेकिन उसी मूल को लेकर के प्रवृत्ति में हमें क्या हो गया? कहा उसी के स्वरूप को हमने नहीं जान पाए, उसके स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर, और उसके स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए तो स्वरूप उसका क्या? सतचित आनंद। तो सतचित को तो हम जान रहे हैं, सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान का न होना, यही क्या है? अज्ञान है। और इसी अज्ञान की मिलित अवस्था को लेकर के ये सारे संसार का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, ये सारा नियम चल रहा है। अब कहने लगे इस अज्ञान की यदि निवृत्ति हो जाए तो जो है क्या होगा? तो ये जो तीनों तापों की शांति कही गई, तो आत्यंतिक जो है शांति प्राप्त। तो अंत में जो हम आत्यंतिक शांति चाहते हैं, तो उपनिषद का उद्देश्य भी है, इसलिए प्रारंभ में ही संकेत करते कि हमको कहां जाना है, लक्ष्य क्या है, तो आत्यंतिक शांति की प्राप्ति करना, तीनों दुखों की सर्वथा निवृत्ति करना, ये जो है चर्चा यहां आई। अब जब ये प्रसंग आया शांति पाठ के द्वारा, तब प्रश्न यही हुआ अपने कि कर्म से कौन सा कर्म करें जिससे ये शांति मिलेगी, या कौन सी उपासना करें जिससे यह शांति मिलेगी। तो जहां तक मायिक प्रवाह है वहां तक नियमबद्धता है, वहां तक कर्म भी फलीभूत होता है, उपासना भी फलीभूत होती है, लेकिन वो फलीभूत होते हैं वो आत्यंतिक शांति दे पाते नहीं। उनका उनकी उपादेयता है, कर्म की उपादेयता, उपासना की उपादेयता व्यावहारिक पक्ष में है, मायिक पक्ष में है, लेकिन जहां पर आत्यंतिक शांति की बात है वहां इनका कोई उपयोग नहीं। ये भाष्यकार उठाने जा रहे हैं भूमिका के अंतर, क्यों? नियम ये है, वार्तिककार आचार्य श्रेष्ठ ने लिखा वार्तिक के अंतर, उन्होंने चर्चा की अर्थो अर्थी दच्छो दुजो हम बुद्ध इति मतिमान कर्म सूत्रोधिकारी, संकेत किया जब तक इस प्राणी के अंतर्गत यह है कि मैं अर्थी हूं, अर्थात मैं पदार्थवान हूं, और अर्थात अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैंने पदार्थों को प्राप्त किया, मैं पदार्थों वाला हूं, ये बोध है। अर्थी दक्षो, मैं ज्ञानवान हूं, मैं निपुण हूं, बुद्धिमान हूं, ये ज्ञान प्रवीणता का ज्ञान है, और ये भी अहम बैठा हूं। और कहने लगे अर्थी दक्षो दुजो हम, मैं उत्तम कुल में दुज परिवार में जो है पैदा होने वाला उत्तम कुल का व्यक्ति ये, और कहने लगे इतना ही नहीं बुद्ध इति मतिमान, और मैं विद्वान हूं, ऐसी यदि मति है, ऐसी अंतःकरण की वृत्ति है, ऐसा यदि अपने को मानता है तब तक वो व्यक्ति कर्म का अधिकारी है, तब तक उसे कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कर्म की जो है उपादेयता यहीं तक बतलाई, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं कस्य क्षणमपि जातु तिष्ठत्य, कब तक? ये स्थिति जब तक है, लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं रहेगी तब तक उसके लिए एक ही श्लोक में कह दिया, दो श्लोक वहां पर किए, यस्तु आत्मरत्रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, ऐसा जो है उसके लिए कोई कर्म की बाध्यता नहीं। तो ये संकेत, तो वही यहां पर उन्होंने कहा कि अर्थी दक्षो दुजो हम बुद्ध इति मतिमान कर्म सूत्रोधिकारी, तब तक वो है कर्म का उसे परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी कहा कि कर्म का परित्याग मत करो अर्जुन, और कर्म का परित्याग ये तुम्हारे लिए फलदायी नहीं हो, लेकिन कर्म में से किसका त्याग करना है तो आगे संकेत कर दिया कामना, कि कामना ही कर्म करवाती है, और कामना यदि नहीं रहेगी तो कर्म होते हुए भी वो कर्म कोई सुख दुख नहीं किंतु शांति प्रदान कर देगा। तो इसलिए यहां पर संकेत किया कि ऐसा जब तक है तब तक वो कर्म का अधिकारी, आगे संकेत किया आत्मा रामो परमो परिब्राण उपरति ब्रह्म विद्याधिकारी, ये संकेत किया। जो आत्मा राम हो चुका है तो ऐसा जो, और संसार से जिसकी उपरति हो चुकी है, परिब्राण जो हो चुका है, परिब्राण का मतलब है परितः, भ्राज्यते इति परिब्राण, चारों तरफ जिसकी गति वो परिब्राट कहलाता, तो ऐसा जो है और सर्वत्र से वो उपरम हो चुका है, कहीं पर भी अर्थात तो उपरम तभी होगा तो इच्छा रहेगी नहीं जब उपरमता हो जाएगी। जब तक हमारी उसमें राग की स्थिति होती है तब तक इच्छा होती, लेकिन जहां से उपरम हो जाएंगे तो उसके प्रति कोई इच्छा ही नहीं होगी। और ऐसा जो है कहने लगे वही है ब्रह्म विद्या का अधिकार, और ये सब कहकर के क्या बता, इत्थम भेदे विवक्षन मुभयोर वह सह, कहने लगे इस प्रकार से इन भेदों को बतलाते हुए आगे संकेत किया नारम नीरम सुशीतम वैश्वानरंच, माने अग्नि को और शीतल जल को, किस लिए? त्रिशोच्छेद कामः पिवेश, कोई प्यास बुझाने के लिए क्या करे, अग्नि और ठंडे जल को मिलाकर के पिए तो उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। ऐसे ही संकेत किया कि कर्म और ये ज्ञान दोनों मिलकर के मिलाकर के तुम चाहो कि इस प्रकार से कर्म भी बना रहे ज्ञान भी बना रहे, ये दोनों रह नहीं सकते। जहां वो ज्ञान होगा तो वही ज्ञान जो है अज्ञान करता है संकेत में। तो वहां पर जो है जैसे अग्नि और जो है ठंडे जल को पी करके जो है शांति नहीं मिल सकती, पिपासा हमारी शांत नहीं हो सकती, ऐसे ही कर्म आदि को लेकर के उपासना आदि को आचार्य शंकर संकेत करते हैं। तब इसका उपाय क्या है, तो वो संकेत कर दिया गया कि जब जो है हम अधिष्ठान रूप आत्मा का विशेषतया बोध प्राप्त कर लेते हैं तभी ये तापों की शांति होती है। ऐसा यहां उद्देश्य है, इसको लेकर के ही यहां जो अंत में सब संकेत किया ओम शांति शांति, पहले तो देवताओं के लिए वो बल मांगा कि ऐसे ज्ञान तक हम कब पहुंचेंगे। तो वहां तक नियम का प्रवाह चला, तो नियम के अंतर्गत देवताओं से प्रार्थना करना, उनकी अनुकंपा को स्वीकार करना अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और वो जब हो जाएगा तब जाकर के जो है मुख्य जो लक्ष्य था उसके लिए संकेत किया कि हमें जो है शांति प्रदान करें। समय हो गया, अधिकतर सब आगे कर ओ